नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग 3,60,000 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि भारतीय वायुसेना के लिए बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान रफाल, मिसाइलों और हवाई जहाज आधारित अधिक ऊंचाई वाले छद्म उपग्रह की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रालय के अनुसार खरीदे जाने वाले अधिकांश रफाल विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार आर्थिक विकास को गति देकर और समावेशी विकास सुनिश्चित करके एक सशक्त तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए काम कर रही है। राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि देश का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर लगातार बढ़ रहा है। संसद ने औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। राज्यसभा में श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि ये संशोधन विधेयक कानूनी स्पष्टता के लिए लाया गया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि श्री गांधी को देश के किसानों की कोई चिंता नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री चौहान ने कहा कि राहुल गांधी किसानों के सशक्तिकरण के पक्षधर कभी नहीं रहे और उन्होंने कई बार राष्ट्र विरोधी बयान दिए हैं। श्री चौहान ने कहा कि सरकार ने कई बड़े फैसले किसानों के हित में लिए हैं।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हमेशा से किसान हितैषी रहे, उनका हर निर्णय किसानों के हित में लिया गया है। उनकी योजनाओं ने किसानों की जिंदगी बदल दी है और अभी अमेरिका से जो समझौता हुआ है उस समझौते में भी किसान हित पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गलत सूचना फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी झूठी कहानियों के जरिए किसानों को गुमराह करने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने 5 राज्यों में ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 3,324 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है। ये राज्य बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल हैं। यह निधि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अप्रतिबंधित अनुदान की दूसरी किस्त के रूप में दी गई है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला द सिल्वा 18 से 22 फरवरी तक भारत की यात्रा पर आएंगे। इस दौरान वे भारत एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शिखर सम्मेलन के लिए 3 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। बांग्लादेश के 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के शुरुआती रुझानों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी जीत की ओर अग्रसर है। देशभर से आ रहे आंशिक परिणामों के अनुसार बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान ने ढाका और बोगरा दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में निर्णायक जीत हासिल की है। मतगणना जारी है। इस बीच बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अंतरिम सरकार द्वारा कराए जा रहे आम चुनावों को सुनियोजित नाटक करार दिया और एक तटस्थ कार्यवाहक सरकार के तहत स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा समावेशी चुनाव कराने की मांग की। भारत ने कल नेपाल को चुनाव संबंधी सहायता की तीसरी किस्त सौंपी। नेपाल स्थित भारतीय उच्चायोग ने बताया कि राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आगामी चुनाव की तैयारियों के लिए नेपाल द्वारा मांगी गई सहायता के अनुसार 270 से अधिक वाहन और अन्य सामग्री सौंपी। इसमें नेपाली सेना के लिए 50 ट्रक शामिल हैं। भारत ने इस वर्ष 20 और 29 जनवरी को नेपाल को चुनाव संबंधी सहायता की पहली 2 किस्तें सौंपी थी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का 64वां दीक्षांत समारोह आज नई दिल्ली में होगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान समारोह में विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान करेंगे। इस समारोह में लगभग 450 विद्यार्थियों को एमएससी, एमटेक और पीएचडी की उपाधियां प्रदान की जाएंगी। आज विश्व रेडियो दिवस है। यह दिन हर वर्ष 13 फरवरी को 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई एक उपकरण है, आवाज नहीं। विश्व रेडियो दिवस 2026 के अवसर पर आकाशवाणी रायपुर यूनेस्को के सहयोग से आज एक विश्व रेडियो दिवस संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। FIH प्रो पुरुष हॉकी लीग में कल रात अर्जेंटीना ने भारत को 8-0 से हरा दिया। ओडिशा के राउरकेला स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में अर्जेंटीना के लिए थॉमस डोमेन ने 4 गोल दागे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।